प्रथम दिवस।
ॐ अनाद्यानन्तकूटस्थ ज्ञानानन्द सदात्मनि अभूतद्वैतजालाय साक्षिणे ब्रह्मणे नमः। विश्वं पश्यति स्वस्वामिसम्बन्धतः शिष्याचार्यतया तथैव पितृपुत्राध्यात्मना एततः। श्रीगुरुमूर्तये नम इदम् श्रीदक्षिणामूर्तये। नारायणी सहचरा रुचिरवचनपुष्पैरर्चनं सञ्चिनोमि ॐ भद्रं कर्णे विष्णो याम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्योगत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्यशे देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न उषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्षोरिष्टदीमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। गत वर्ष हम लोगों ने ज्ञान साधना का विचार किया। साधना और साध्य, यद्यपि प्रायः करके वेदांत शास्त्र में पहले साध्य का निरूपण किया जाता है और फिर साधना का निरूपण किया जाता है। ब्रह्म सूत्र को प्रारंभ करते हुए भगवान वेदव्यास ने सबसे पहले लक्ष्य का निरूपण किया, साध्य का निरूपण किया। साधना से व्यक्ति जहां पहुंचता है उसको साध्य कहते हैं, उसी को लक्ष्य कहते हैं। जो हमारे सामने तारे की तरह चमकता रहे, लखना जो चीज हमको सामने लखाती है दिखती है उसी को लक्ष्य कहते हैं। प्राचीन काल में जब एक जगह से दूसरी जगह जाना होता था तो दिशा का निर्णय करने के लिए किसी न किसी तारे को सामने कर लेते थे, इधर जाना है तो चूंकि उधर हमारी नजर रहती थी, उधर हम देखते रहते थे, वह हमको लखाता रहता था हमारा मार्ग कौन सा है, इसलिए उसको लक्ष्य कहते थे। अब उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जिस मार्ग से जाया जाता है उसको साधना कहते हैं। और जहां पहुंचा जाता है उसको साध्य कहते हैं। जब तक पहले लक्ष्य का पता न हो, जब तक उद्देश्य का पता न हो, जब तक गंतव्य का पता न हो, जब तक जहां हमको पहुंचना है उसका पता न हो, तब तक वह चीज हमको आकृष्ट करती नहीं, खींचती नहीं। ठीक जिस प्रकार से शलभ बत्ती का कीड़ा पहले देखता है सामने बत्ती को, जब बत्ती को देखता है तो बत्ती को देख करके उसकी तरफ जाता है। सामान्यतः मनुष्य समझता है शलभ जा रहा है, कीड़ा जा रहा है, परंतु विचारशील लोगों का कहना है दीपक पहले आंख के द्वारा शलभ के हृदय में, कीड़े के हृदय में प्रवेश कर जाता है। अब हृदय में प्रविष्ट हुआ हुआ जो वह दीपक है वह स्वयं अपनी तरफ दौड़ रहा है। दीखती गति हमको शलभ में है, कीड़े में है, परंतु वस्तुतः गति देने वाला तो वह दीपक ही है। अगर दीपक ने आंख के द्वारा उसके हृदय में प्रवेश न किया होता तो वह शलभ वह कीड़ा कभी भी उसकी तरफ नहीं दौड़ता। इसलिए जब कहा जाता है साधक साधना करता है तो वस्तुतः साधक क्या साधना करेगा, साध्य रूपी लक्ष्य रूपी परमात्मा उसके अंदर प्रविष्ट होकर के खुद ही उसको अपनी तरफ खींच रहा है। इसी दृष्टि से वेदांत शास्त्र में सामान्यतः नियम है कि पहले साध्य का लक्ष्य का जहां पहुंचना है उस गंतव्य का उद्देश्य का पहले निरूपण कर दिया जाए, जिससे वह साधक के हृदय में प्रविष्ट हो जाए। साधक के हृदय में प्रविष्ट होने पर साधक स्वयं ही उसकी तरफ चल देगा, उसकी तरफ गए बिना रह नहीं सकता, क्योंकि वह लक्ष्य है ही ऐसा। इसीलिए उसको हम लोगों ने यहां चरम लक्ष्य शब्द से कहा। चरम का मतलब होता है जहां जाने के बाद फिर आगे कहीं जाना अवशिष्ट न रह जाए, आगे कहीं जाना बाकी न रह जाए, आगे कोई नया दूसरा लक्ष्य न आ जाए। जब तक लक्ष्य पर पहुंचने के बाद हमारे सामने कोई दूसरा लक्ष्य है, कोई दूसरा साध्य है, कोई दूसरा गंतव्य है, कोई दूसरा प्राप्तव्य है, कोई दूसरा ज्ञातव्य है, तब तक उसकी चरम संज्ञा नहीं कही जा सकती। चरम का मतलब है जहां पहुंचने के बाद और कहीं भी जाना और कुछ भी पाना बाकी न रह जाए। चूंकि यह चरम लक्ष्य चरम है, इसलिए ही यदि ये हमारे हृदय में आ गया तो जब तक इसकी प्राप्ति नहीं होगी तब तक हम शांत बैठे नहीं रह सकते। ठीक जिस प्रकार से साधारण पुरुष स्वभावतः हिरण्य का लोभी होता है, सोने का लोभी होता है, सबको सोना चाहिए। अब यदि किसी कांच की अलमारी में तुमको स्पष्ट सोना पड़ा हुआ दिख रहा है
तो बार बार उस सोने को लेने की तमन्ना तुम्हारे अंदर जागती रहेगी। यदि तुमको उपाय का पता लग जाए तो अवश्य ही उस सोने को तुम ग्रहण करना चाहोगे, पाना चाहोगे, प्राप्त करना चाहोगे। जब तक पा नहीं लोगे तब तक शांति से बैठ नहीं सकोगे। ठीक इसी प्रकार से चरम लक्ष्य जिसके बाद और कुछ पाना शेष नहीं रह जाएगा, वो यदि तुमको पता लग जाए कि तुम्हारे सामने है, तुमको पता लग जाए कि किस उपाय से उसको प्राप्त किया जा सकता है, तो फिर तुम कभी शांति से बैठ नहीं सकते जब तक उसको पा न लो। चूंकि वह चीज तुमको इतनी बड़ी गति देती है, इसलिए अंग्रेजी वाले उसको कहते ही हैं इमोशन। मोशन माने गति। जिस चीज के प्रति तुम्हारा आकर्षण पूरा होता है वह स्वतः तुमको गति देता है, स्वतः तुमको उधर जाने के लिए प्रवृत्त करता है। वेदांत शास्त्र इसीलिए प्रायः करके पहले साध्य का निरूपण करता है। वह लक्ष्य तुम्हारे हृदय में उतर गया तो आगे साधना तो तुम खुद ही कर लोगे, तुमसे किए बिना रहा ही नहीं जाएगा। उसके लिए तुम्हारे अंदर ऐसी तड़प पैदा हो जाएगी जो तुमको शांत रहने नहीं दे सकती। कई बार जो हमारे पास अधिक आते रहते हैं उनको हम कह देते हैं, हम ये तो तुमको गारंटी दे करके नहीं कह सकते, इस बात का वचन नहीं दे सकते कि तुमको परमात्मा मिलेगा या नहीं, परंतु ये हम निश्चित कह सकते हैं कि तुम संसार से आकृष्ट नहीं हो पाओगे, इस दुनिया की तरफ तुम्हारी प्रवृत्ति नहीं रह पाएगी, ये निश्चित है। क्योंकि एक बार उस चरम लक्ष्य का पता लग गया तो सामान्य लक्ष्य तुमको अपनी तरफ खींच नहीं सकेंगे। वैराग्य की पूर्णता न होने पर तुम पूरी तरह से उधर लग न सको, ये तो संभव है, परंतु दिल हमेशा खरोचता रहेगा, मैं उधर क्यों नहीं जा पाता, मैं उसको प्राप्त क्यों नहीं कर पाता। और यदि ये खरोचना दिल का शुरू हो गया तो निश्चित समझ लो परमात्मा ने तुम्हारा वरण कर लिया, परमात्मा ने तुमको चुन लिया। अतिधन्य वेद इसीलिए स्पष्ट कहता है यमे वैषम वृणुते तेन लभ्या। परमात्मा ने जिसको चुन लिया वो उसको प्राप्त कर लेता है। आचार्य शंकर ने इस मंत्र के दो प्रकार से अर्थ किए। एक जगह कहा है यम परमात्मानम एव एष साधकः वृणुते, दूसरी जगह कहा है यम अधिकारिणम एष परमात्मा वृणुते। जिस अधिकारी को, जिस साधक को परमात्मा चुन लेते हैं उसको प्राप्त हो जाता है। दूसरे जगह पर कह दिया कि साधक जब परमात्मा का वरण कर लेता है तब उसको प्राप्त हो जाता है। कई लोग शंका करते हैं एक ही मंत्र के दो अर्थ कैसे, और साधारणतः दिखते हैं कि बिल्कुल विरुद्ध हैं। एक जगह परमात्मा चुनता है, दूसरी जगह साधक चुनता है, परंतु वस्तुतः दोनों अर्थों में कोई फर्क नहीं है। जैसा अभी थोड़ी देर पहले बतला रहे थे, दीपक आंख के द्वारा हृदय में प्रवेश करता है, हृदय में प्रवेश किए हुए दीपक के द्वारा शलभ उधर दौड़ता है, अर्थात उसका वर्ण करता है। तो चाहे ये कहो कि साधक ने परमात्मा को हृदय में धारण कर लिया इसलिए जा रहा है, अथवा कहो कि परमात्मा उसके हृदय में बैठ गया इसलिए जा रहा है, बात एक ही है। जब इस प्रकार से ब्रह्मसूत्र को प्रारंभ किया तो भगवान वेदव्यास ने लक्ष्य का निरूपण कर दिया। जन्माद्यस्य यतः, परमात्मा का स्वरूप बतला दिया, यह लक्ष्य है। श्वेत केतु उद्दालक आरुणी का पुत्र था, माँ का उसके ऊपर बड़ा प्रेम था। माँ का प्रेम होता है तो बच्चे को पिता चाहे जितना योग्य हो पढ़ा नहीं पाता, सिखा नहीं पाता। पढ़ने के लिए बैठाएगा या व्यापार करने के लिए दुकान में बैठाएगा तो माँ कहेगी 4 बज गए हैं अब उसको घर भेज दो। आजकल दूरभाष भी लोगों के वहां लगा रहता है, दूरभाष से कहेगी इसने आज तो देर रोटी भी नहीं खाई है अब तो भेज दो। पिता कहेंगे अरे अभी हिसाब लिख रहा है भाई, उसको काम खत्म कर लेने दो या पढ़ाई कर रहा है। तो माँ कहेगी अरे तो कल पढ़ा लेना ना, हिसाब कल लिख लेगा ना। अब ये काम यदि रोज कल होता रहेगा तो लड़का काम सीखेगा कहां से या पढ़ाई करेगा कहां से। श्वेत केतु की माता का भी उसके प्रति बड़ा प्रेम था। प्रेम की अतिशयता के कारण, प्रेम के आधिक्य के कारण उसकी पढ़ाई नहीं हो पा रही थी। होते होते वह 12 वर्ष का हो गया। अब 12 वर्ष का हो गया और अभी उसकी पढ़ाई नहीं हो पाई, पिता सोचने लगे कि अब मेरे साथ तो ये पढ़ नहीं पाएगा, कहीं ना कहीं इसको दूसरे के पास गुरुकुल में भेजना पड़ेगा। जैसे आजकल आप लोग सोचते हैं बच्चे को किसी हॉस्टल वाले स्कूल में भेजें क्योंकि घर में नहीं पढ़ पा रहा। उसने श्वेत केतु को बुला करके कहा बेटा तेरे को पढ़ने के लिए बाहर भेजूंगा, क्योंकि तू 12 साल का हो गया अभी तेरी पढ़ाई हो नहीं रही है। हमारे कुल में अभी तक कोई बेपढ़ा लिखा हुआ नहीं, इसलिए तुम्हारा जाना जरूरी है। भेज दिया उसको। श्वेत केतु ने जाकर के अध्ययन किया। अध्ययन का उद्देश्य होता है मनुष्य के अंदर विनय का आना। हमारे यहां जो संस्कृत में पहली पुस्तक पढ़ाई जाती है हितोपदेश, जैसे आजकल आप लोगों की होती है फर्स्ट प्राइमर, तो जो पहली पुस्तक बच्चे को पढ़ाते हैं उस हितोपदेश के पहले पृष्ठ पर आ जाता है विद्या ददाति विनयम्। विद्या की परीक्षा ये है कि मनुष्य में विनय आवे। चाहे जितना पढ़ लो यदि तुम्हारे में विनय नहीं आई तो तुमने वास्तविक विद्या को पढ़ा नहीं। पाश्चात्य देशों में न्यूटन बड़ा भारी वैज्ञानिक हुआ। एक बार न्यूटन से किसी ने कह दिया आपके जैसी योग्यता वाला व्यक्ति, आपके जैसा ज्ञान को प्राप्त करने वाला आज तक हुआ नहीं, भविष्य में कोई होता दिखता भी नहीं। न्यूटन ने कहा बेवकूफी की बातें मत किया करो। ज्ञान के समुद्र के किनारे पर मैं केवल थोड़े से कंकड़ों को बटोर रहा हूं। आई एम कलेक्टिंग पेबल्स ऑन द सी शोर ऑफ नॉलेज। ज्ञान तो समुद्र की तरह है अथाह, मैं तो थोड़े से कंकड़ों को ले रहा हूं बस। ये है विनय। 20वीं शताब्दी में और संभवतः न्यूटन के बाद सबसे बड़ा वैज्ञानिक हुआ आइंस्टाइन। किसी ने आइंस्टाइन से कह दिया कि न्यूटन को तो आपने न जाने कितना पीछे छोड़ दिया, आपके जैसा न्यूटन कुछ भी नहीं रहा। आइंस्टाइन कहता है क्या मूर्खता की बातें कर रहे हो, कहीं पर कोई चीज देखने में नहीं आ रही है। तो छोटा बच्चा पिता के कंधे पर चढ़ जाता है, पिता के कंधे पर चढ़कर के कुछ ज्यादा दूर तक देख लेता है क्योंकि पिता से ऊपर हो जाता है थोड़ा। क्या इतने मात्र से वो अपने पिता से बड़ा हो गया? इसी प्रकार न्यूटन के कंधे पर बैठ करके मैं एक छोटा सा बच्चा कुछ आगे देख पा रहा हूं, ये कोई मेरी विशेषता नहीं है, ये तो उन्हीं की विशेषता। उन्होंने जो ज्ञान शिखर बनाया उसके ऊपर चढ़ के ही ना देख पा रहा हूं। इसलिए विद्या विनय को देती है, विद्या ददाति विनयम्। श्वेत केतु ने अध्ययन तो खूब किया, अध्ययन करके वापस आया, परंतु उसमें विनय नहीं आई। ठीक जैसे आजकल बहुत से बच्चे जितना पढ़ते हैं उतना समझते हैं हम विद्वान बन रहे हैं, कहीं पर भी अंधकार की जो सीमा होती है वो प्रकाश की सीमा के अनुसार बढ़ती जाती है। एक धूप बत्ती को जला लो तो धूप बत्ती जल रही है, बड़ा कम प्रकाश है, उसके चारों तरफ अंधकार भी तुमको उतने ही छोटे घेरे का दिखेगा। उसकी अपेक्षा दीपक को जला लो, मोमबत्ती को जला लो, तो तुमको अंधकार का घेरा काफी बड़ा दिखेगा, कम से कम 20 फुट का घेरा, 25 फुट का घेरा अंधकार का दिखेगा, वृत्त चारों तरफ। अगर 200 नंबर का लट्टू लगा लो तो संभवतः तुमको आधे मील का वृत्त दिखाई देगा, घेरा दिखाई देगा अंधेरे का, क्योंकि जितना प्रकाश फैलेगा उतना ही अंधेरे का वृत्त, अंधेरे का घेरा बढ़ता चला जाएगा। इसलिए जितना अपना ज्ञान बढ़ता है उतना ही पता लगने लगता है कि हमारी अज्ञान की सीमाएं कितनी ज्यादा है। थोड़े ज्ञान वाला समझता है मैं सब कुछ जानता हूं, जितना ज्ञान अधिक होता है उतना पता लगता है मैं कितना कम जानता हूं, नहीं जानने वाली चीजें कितनी ज्यादा हैं, मेरे अज्ञान का विषय कितना बड़ा है ये वो पता लगता है। विशेष विचार आज नहीं करेंगे, कभी और करेंगे। इसीलिए वेदांत बार बार कहता है कि अज्ञान तो ज्ञान पर ही रहता है। लोगों को बड़ी बात खटकती है जब कहते हैं कि ब्रह्म ज्ञान घन है और वही अज्ञान का आश्रय है, तो लोग कहते हैं ज्ञान में अज्ञान कैसे रहेगा। और वेदांत इस बात को स्पष्ट करता है कि ज्ञान में ही अज्ञान रहा करता है। तो जितना बड़ा तुम्हारा ज्ञान का घेरा बनता चला जाता है, उतना ही बड़ा अज्ञान का घेरा होता चला जाता है। पता लगता है मैं कितना नहीं जानता। इसीलिए जब मनुष्य के अंदर विद्या आएगी तो विनय आएगा, श्वेत केतु में नहीं आया। घर आया, उसने विचार किया मेरा पिता कोई बहुत बड़ा विद्वान नहीं रहा होगा, अगर बहुत बड़ा विद्वान होता तो मुझे दूसरी जगह क्यों पढ़ाने भेजता, खुद ही पढ़ा देता। इसलिए आकर के जैसे आजकल लोग करते हैं ना, पिता को सामने देख करके खाली नमस्कार पिताजी ऐसा मुंह से बोल दे। यूपी के रहने वाले होंगे तो दंडवत पिताजी मुंह से कहेंगे, दंडवत प्रणाम नहीं करेंगे। और कहीं जाकर के विदेशों से पढ़ के आ गए तो अज्ञान के सर्वथा केंद्र बन जाते हैं, तो पिता को भी कहेंगे हेलो फादर। श्वेत केतु भी इसी तरह आया, उसने कोई दंडवत प्रणाम करना, पैर छूना कुछ नहीं। पिताजी समझ गए, भेजा था पढ़ने को लेकिन ये विद्या प्राप्त करके आया नहीं। विद्या की परीक्षा तो विनय से है। उन्होंने कहा बेटा पढ़ी आया अच्छी तरह से? बोले हाँ खूब अच्छी तरह से पढ़ी आया। बोले क्या वो चीज भी पढ़ आया? उत्तम आदेशम अप्राक्षम ये न अश्रुतम श्रुतम भवति, अमतम मतम अविज्ञातम विज्ञातम भवति। क्या तुम उस आदेश को उस चीज को भी सीख के आए जिससे जिस बात को कभी नहीं सुना हो वो सुनी हुई हो जाए, जिस बात को कभी न जाना हो जानी हुई हो जाए, कभी न सोचा हो सोची हुई हो जाए, जिसको जानने के बाद जानना बाकी नहीं रहता। इसलिए जो कुछ है सब जान लिया गया, जो कुछ है सब सुन लिया गया। ये बात बार बार वेद में आती है। श्वेत केतु की कथा बतला ही रहे हैं, ये सामवेद की कौसुभी शाखा में आती है। इसी प्रकार से अथर्ववेद में आता है, पिप्पलाद शाखा में। कस्मिन्न भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति, किस चीज को जान लेने पर सब कुछ जान लिया जाता है। इसी बात को यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण कहता है, आत्मनि खलु अरे दृष्टे श्रुते मते विज्ञाते इदं सर्वं विदितम्। उस आत्मतत्व को सुन लेने पर, जान लेने पर, समझ लेने पर जो कुछ है वह सब जान लिया जाता है। तो सभी वेद एक स्वर से उस चरम लक्ष्य को बतलाते हैं जिसको प्राप्त कर लेने पर जो कभी सुना न होवे वो सुना हुआ हो जाता है, जो कभी देखा न होवे देखा हुआ हो जाता है, जो कभी जाना न होवे वो जाना हुआ हो जाता है, जो कभी सोचा न होवे वो सोचा हुआ हो जाता है। अब श्वेत केतु घबराया। श्वेत केतु ने विचार किया आप पिताजी कहेंगे फिर पढ़ने जाओ, परंतु उसका गर्व तो खत्म हो गया था। उसने कहा पिताजी ये बात तो मुझे वहां पढ़ने को नहीं मिली, आप ही बता दे। मैं थोड़ा सा अभी अभिमान बाकी था, कहता है संभवतः ये बात हमारे गुरु जी नहीं जानते थे, नहीं तो मेरे जैसे योग्य शिष्य को क्यों नहीं पढ़ाते। परंतु आखिर उद्दालक आरुणी पिता थे, चेहरे से समझ गए वापस जाने से घबरा रहा है। तब उसको समझाने लगे, यथा सौम्य एकेन मृत्पिंडेन सर्वं मृण्मयं विज्ञातं भवति। मान लो कोई मिट्टी के विषय में तुमको ज्ञान प्राप्त करना है, तो यदि तुमने उस मिट्टी के गुण धर्म को जान लिया तो मिट्टी से होने वाली सब चीजों को जान लो। जैसे सोने की परीक्षा सिखाई जाती है सोने के कार्य करने वाले को, तो सोने को कसौटी पर कसना उसको सिखा दिया जाता है। अब किसी भी प्रकार का गहना आ जाएगा, वो कसौटी पर कस के बतला देगा कि इसमें सोना कैसा है। हर एक गहने को कस के नहीं सीखना पड़ता, सोने को कस के सीखना पड़ता। आगे श्वेत केतु ने उस तत्व का उपदेश दिया। यहां पर भी भगवान ने उस चरम लक्ष्य का यही निरूपण किया। यद् ज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यद् ज्ञातव्यम् अवशिष्यते। यद् ज्ञात्वा, जिसको जान करके, इह यहां जीते हुए ही। लक्ष्य वो होता है जो उसको प्राप्त होवे जो उसकी तरफ चला। मान लो हम किसी तरफ चले और कोई दूसरा वहां व्यक्ति पहुंच गया, तो इससे ये तो नहीं कह सकते कि हमारा चरम लक्ष्य पूरा हो गया। हमने साधना प्रारंभ कहां की? तो इस शरीर मन में रहते हुए हमने साधना प्रारंभ की। हम अपने को इस शरीर वाला ब्राह्मण क्षत्रिय देवदत्त यज्ञ दत्त हिंदुस्तानी पाकिस्तानी, ये सब शरीर के धर्मों वाला ही अपने को समझ रहे हैं ना। तो मैं देवदत्त ब्राह्मण हिंदुस्तानी, मैंने साधना शुरू की, चरम लक्ष्य मैं प्राप्त करने चाहता हूं। अब सारे वर्णों से रहित वैकुंठ में जाकर के मैं इस शरीर से रहित होकर के, इन सारी परिस्थितियों से रहित होकर के, नए शरीर वाला चतुर्भुजी विष्णु पार्षद बनकर के यदि उस चीज को प्राप्त करूंगा, तो प्राप्त करने वाला मैं तो नहीं रहा ना। मुझे देवदत्त ने साधना शुरू की थी, ब्राह्मण ने साधना शुरू की थी, ठीक है मेरा कुछ हिस्सा वहां भी रहा सूक्ष्म शरीर एक होने के कारण, परंतु वस्तुतः तो जिस रूप में मैंने प्रारंभ किया उस रूप में तो नहीं पहुंचे ना। बुद्ध देव के बारे में आता है, बुद्ध देव भिक्षा करते हुए कहीं जा रहे थे, एक नर्तकी ने उनको देखा नाचने वाली, जिसको आजकल तुम लोग एक्ट्रेस कहते हो। बुद्ध देव से वह आकृष्ट हो गई। उसने बुद्ध देव से कहा कि आप मेरे यहां आकर के रहें। बुद्ध सर्वज्ञ थे, समझ गए। उन्होंने कहा मुझे तूने अपने घर बुलाया है, मैं आऊंगा तो जरूर, परंतु अभी नहीं। मैं तुम्हारे घर जरूर आऊंगा, तुमने मुझे बुलाया है, मैं साधु हूं बुलाए हुए के, यहां जाऊंगा तो जरूर, परंतु आज नहीं, समय आने पर आऊंगा। बुद्धदेव विचरते हुए चले गए। 10-20 साल बीत गए। नर्तकी को तरह तरह के चरित्रहीनताओं के कारण तरह तरह के रोग हो गए, गलित कुष्ठ हो गया। जो लोग उसके नाचने के ऊपर मुग्ध हो करके उसको हीरों के कंठे चढ़ाते थे, अब उसके सड़े हुए शरीर को देख करके उस बदबू के मारे कोई उसके आसपास भी जाने वाला नहीं था, पड़ी हुई थी नहीं। उतने वर्षों के बाद बुद्धदेव उधर से निकले, किसी से उन्होंने पूछा, अरे उस नर्तकी का मकान जहां है वहां मुझे ले चलो। लोग कहने लगे, भगवान क्या कह रहे हैं, वो तो महान दुराचारी महान भ्रष्टा कोढ़ से सड़ रही है, जो जन्म भर उसके साथ रहे वो भी उस बदबू को सहन नहीं कर पा रहे हैं, दूर जा रहे हैं, आप वहां जाके क्या करेंगे। बुद्धदेव ने कहा, उसने मुझे बुलाया था, मुझे जाना है। पहुंचे उसके घर पर बुद्धदेव, नर्तकी से कहा, अरे मैं आ गया, तुमने मुझे निमंत्रण दिया था। रोने लग गई, जिस मैंने निमंत्रण दिया था उसका शरीर आज आपकी सेवा के योग्य है नहीं, अब तो मैं सड़ रही हूं। बुद्धदेव की अंतर्दृष्टि थी, उन्होंने कहा, मुझे तुम्हारे शरीर ने बुलाया, ये शरीर के साथ होकर के तुमने बुलाया, परंतु मैंने तो तुम्हारे शरीर को छोड़ करके जो तुम्हारा असली रूप है उसका निमंत्रण लिया है। इस समय तुझे मेरी जरूरत है, मैं तेरे को बतलाता हूं कि किस तरह से तू इस विकृत अवस्था में रह करके भी अविकृत भाव को प्राप्त कर सकेगी। उन्होंने उसको उपदेश दिया। तो जैसे वो नर्तकी कह रही है, जिस शरीर से मैंने आपको चाहा था वो शरीर आपके योग्य नहीं। यद्यपि बुद्धदेव की दृष्टि तो अंतरात्मा की है, उसी प्रकार से यदि हमको यहां पर अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी तो अंतः शरीर की दृष्टि से, अंतरात्मा की दृष्टि से, सूक्ष्म शरीर की दृष्टि से मुझे चाहे वो परलोक में भी प्राप्त हो जाएगी। परंतु वस्तुतः तो लक्ष्य की प्राप्ति तभी मानी जाएगी जब जिस मैंने शुरू किया, जैसे मैंने शुरू किया, वही मैं उसको पाऊं। इसलिए वेद जगह जगह यह शब्द का प्रयोग करता है, यह चेद वेदी तस सत्यमस्ति न चेदिहा वेदी महती विनष्टि। यहां इस शरीर में इस अध्यास की स्थिति में यदि तुमने उस तत्व को जान लिया तो काम बन गए। भगवान ने भी इसीलिए कहा, यदि ज्ञात्वा न इह भूयोन्यत ज्ञातव्यम अवशिष्यते, इह इस शरीर में रहते हुए कुछ भी ज्ञातव्य कुछ भी तुमको प्राप्त करने योग्य नहीं रह जाएगा, ऐसा वह चरम लक्ष्य है। इसीलिए स्मृतिकारों ने कहा है, जीवन मुक्ति सुख प्राप्ति हेतवे जन्म धारणम नित्य मुक्तस्य देवस्य नहीं अर्थादि हेतवे। नित्य मुक्त वह परब्रह्म परमात्म देव मनुष्य शरीर के अंदर क्यों आया, तो जीवन मुक्ति सुख प्राप्ति, जीवन मुक्ति के विलक्षण सुख को देखने के लिए। ये एक विलक्षण सुख है, मोक्ष का सुख भी अद्भुत सुख है, परंतु सारे भिन्न भिन्न पदार्थों को भिन्न भिन्न रूप से देखते हुए भी उसकी एकता को देखने का आनंद कुछ विलक्षण आनंद है। इस आनंद के लिए उस परब्रह्म परमात्म देव ने जन्म धारणम गर्भ में आया, अन्यथा उस नित्य मुक्त परब्रह्म परमात्म देव का जन्म में आने का कोई सामान्य उद्देश्य नहीं हो सकता। इसलिए भगवान ने कहा यज्ञात्वा नेह, यहां आकर के यदि उस जीवन मुक्ति को प्राप्त कर लेते हो, उस चरम लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हो, तो अन्यत ज्ञातव्यम न अवशिष्यते, इसके बाद और कोई भी तुमको ऐसी चीज नहीं होगी जिसको तुम जानना चाहो समझना चाहो। कोई कह सकता है कि भगवान ने ये कहा जानना बाकी नहीं रहता है लेकिन शायद कुछ पाना बाकी रह जाए, तो अन्यत्र भगवान ने कह दिया है तस्य कार्यम न विद्यते यस्त्वात्मरतिरेव स्याद् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यम न विद्यते। उस चरम लक्ष्य को प्राप्त कर लिया, उसके लिए कोई कार्य भी नहीं बच जाता, कुछ भी प्राप्त करने योग्य नहीं बच जाता, करके उसको कुछ मिल जाएगा वह कुछ भी नहीं है। तो किसी को शंका हो सकती है कि कुछ भी नहीं जानना कुछ भी नहीं करना, ये तो जड़ चीज में भी हो सकता है। इसलिए भगवान ने साथ साथ कह दिया सकृष्ण कर्म कृत, जितने भी कर्म होते हैं वो सारे के सारे उसके किए हुए हैं। कोई कर्म ऐसा नहीं जो उसका किया हुआ न रहे। इस चरम लक्ष्य की प्राप्ति को जिस प्रकार से संस्कृत भाषा में कहते हैं कि यदि कहीं हाथी का पैर बना हुआ है तो जितने भी दूसरे पशु हैं उन सब का पैर उसके अंदर ही आ जाए, क्योंकि सबसे बड़ा हाथी का ही पैर होता है। सर्वे पदा हस्तिपदे निमग्ना, ठीक इसी प्रकार से यहां पर भी इस चरम लक्ष्य की प्राप्ति हो गई तो ऐसा नहीं कि अन्य लक्ष्य अप्राप्त रह गए। सकृष्ण कर्म कृत, सारे लक्ष्यों को उसने प्राप्त कर लिया, सारे लक्ष्य उसके अंतपाती हो गए। अन्यत्र श्रुतियों ने कहा है यथा नद्यः संदमाना समुद्रे अस्तंगच्छन्ति नाम रूपे विहाय, जिस प्रकार से नदियां बहते हुए जब समुद्र में पहुंच जाती हैं तो सारी नदियों का पानी समुद्र में पहुंच गया। समुद्र में पहुंचने के बाद उनका अलग अलग नाम तो नहीं रह जाता है, ये गंगा का पानी, ये यमुना का पानी, ये महानदी का पानी, ये कावेरी का पानी। इस प्रकार से यद्यपि समुद्र के अंदर तुम कह नहीं सकते हो कि ये पानी गंगा का है, यमुना का है, महानदी का है, नर्मदा का है, कावेरी का है, परंतु सारे पानी उसमें मौजूद हैं। उन सब का अभाव नहीं है, उन सब की पूर्णता है, क्योंकि जो भी बूटियां गंगा जी लेकर के आई हैं वो सारी की सारी बूटियों का असर समुद्र में पहुंच गया ना। जो भी बूटियों का असर नर्मदा लेकर के आई है वो सब समुद्र में पहुंच गया ना। तो समुद्र की पूर्णता अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, इसका मतलब नहीं है कि समुद्र उन सब से छूछा है और उनके पास कुछ नहीं है। समुद्र के पास वह सब कुछ है। ठीक इसी प्रकार से चरम लक्ष्य की प्राप्ति का अर्थ ये नहीं है कि अन्य लक्ष्य प्राप्त हुए बिना ही कह दिया गया होवे उस चरम लक्ष्य की प्राप्ति हो गई, वरन जैसे हाथी के पैर में सारे पैर आ जाते हैं उसी प्रकार से उस चरम लक्ष्य की प्राप्ति होने पर सब कुछ प्राप्त हो जाता है, कुछ भी अप्राप्त रह नहीं जाता। शास्त्रकार इसीलिए कहते हैं कृत कृत्यतया तृप्तः प्राप्त प्राप्यतया पुनः प्राप्त प्राप्त जो कुछ भी प्राप्त करने के योग्य है वो सब उसको प्राप्त है। कृत कृत्यतया जो कुछ भी करने लायक है वो सब उसने कर लिया। तृप्यन्नेव स्वमनसा मन्यते सौ निरंतरम असौ निरंतरम मन्यते इसके अंदर हमेशा ही ये मन के अंदर बना रहता है कि तृप्यन्नेव स्वमनसा के सर्वथा पूर्णतया उसके मन में तृप्ति बनी रहती है किसी प्रकार की अतृप्ति नहीं रहती। यद्यपि था तो ये पहले भी ऐसा नहीं है कि इसकी पूर्णता कोई नई आई होवे। शास्त्र कहते हैं आत्मभूपतिरयम् पुरातनः पीतमोह मदिरा मदाकुलः। अयम आत्मभूपति वस्तुतः आत्मा का जो स्वरूप है ये भूपति है राजाओं का राजा है। ये नहीं है कि ये नया राजा बना है। आत्मभूपति रयम पुरातन पहले से पहले भी चले जाओ तो ये आत्मा ही भूपति है। जब इस संसार का स्पंद भी नहीं था तब भी सदैव सोम्येदमग्र आसीत आत्मै वेदमग्र आसीत ब्रह्मै वेदमग्र आसीत बार बार वेद कहता। जब इसका स्पंद का नाम निशान नहीं था तब भी ये आत्मभूपति तो वैसा का वैसा था। इसलिए पुरातन है पुरा भव जितना पीछे से पीछे जाते जाओ ये वहां भी भूपति ही है। फिर हो क्या गया है? क्यों फिर इसको साधन की अपेक्षा है? क्यों इसको साध्य की प्राप्ति आवश्यक हो रही है? क्यों इसको चरम लक्ष्य बनाना पड़ रहा है जब ये चरम लक्ष्य इसका पहले ही है आत्मभूपति रयम पुरातन है। कहते हैं पीत मोह मदिरा मदाकुला इसने मोह का अज्ञान का नशा कर लिया है अज्ञान की शराब पी ली है। ठीक जैसे ब्राह्मण शराब पी करके अपने को चांडाल समझता है। है तो वो उस समय में भी ब्राह्मण ही परंतु अब अपने को ब्राह्मण नहीं समझ रहा है इसलिए चांडाल की तरह आचरण कर रहा है। सड़क पर पड़ा हुआ है नाली में पड़ा हुआ है पीत मोह मदिरा मद आकुल उस मद के कारण उस नशे के कारण आकुल है चांडाल हुआ हुआ है पड़ा हुआ है सड़क के ऊपर नाली के अंदर। किंकरस्य मनसो भी किंकर इस आत्मभूपति का ये मन तो एक छोटा सा दास है और ये खाली मन का ही गुलाम बना हुआ नहीं है। किंकरोपि मनसोपि किंकरई इंद्रियैर अह किंकरी कृता मन के भी जो दास मन की भी जो गुलाम इंद्रियां उन इंद्रियों का भी ये किंकर बना हुआ है उनका भी दास बना हुआ है। कितनी दयनीय स्थिति इस नशे के कारण उसकी हुई हुई है। सड़क पड़ी नहीं गंदी नाली में पड़ा हुआ अपना गुलाम मन मन का गुलाम इंद्रियां इंद्रियों का भी गुलाम हुआ हुआ। एक राजा किसी महात्मा के पास अपने मंत्री को भेज के कहते हैं उनसे कहो महल में आ जाए। महात्मा ने जवाब भेजा राजा को मिलना हो तो मेरे से मिलने आ गए। मैं अपने गुलाम के गुलाम के पास कैसे चला जाऊं। मंत्री ने कहा, आप क्या कह रहे हैं, ना आपके पास पहनने के लिए कपड़ा एक लंगोटी लगाए हुए पड़े हुए हैं, ना आपके सिर पर छप्पर वटवृक्ष की छाया में पड़े हुए हैं, आपके पास है क्या जो आप राजा को कहते हैं कि ये तो मेरे गुलाम के गुलाम का गुलाम है। महात्मा ने कहा, जो बात मैंने कही उसको कह दे। राजा ने सुनी, घबराया, आया महात्मा के पास। मैंने आपको बुलाया था, आपने ये खबर भेजी? बोले बिल्कुल भेजी। मैं आपके गुलाम के गुलाम का गुलाम कैसे? बोले इंद्रियां तेरे को परेशान करती हैं कि नहीं? कान सुनना चाहता है तो पुराने जमाने में गवैयों को बुलाते थे, आज के जमाने में वो क्या तुम्हारे टेप रिकॉर्डर लगा देते हो, सुने बिना रहा नहीं जाता। एक हमारे सज्जन थे तो आश्रम में 8 बजे घंटी बजती है भोजन की, तो वो हमेशा 5 मिनट देरी से आवे, भोजन की घंटी बज जाए, उसके बाद हम लोग 15वें अध्याय का पाठ करते हैं, फिर भोजन शुरू होता है। अब वो जब 15वें अध्याय का पाठ खत्म होने को होवे, पूर्ण मदह पूर्ण विदह होने को होवे, तब आगे बैठ जाए। पहले दिन सोचा कुछ बाथरूम चले गए होंगे, कुछ हो गया होगा, दूसरे दिन देखा, तीसरे दिन देखा, उनसे फिर पूछा, क्या बात है, आप रोज देरी कैसे होती है, कमरा भी कोई दूर नहीं है आपका। कहने लगे, स्वामी जी वो 8 बजे न्यूज आता, उसको सुने बिना मेरे से रहा नहीं जाता, हेडलाइन सुन के भाग के तो आ जाता हूं। कान में खुजली मचती है, वो न्यूज सुनना पड़ता। इसी प्रकार किसी को गाना सुनना पड़ता, किसी को देखना पड़ता, तरह तरह के दृश्य आजकल आते हैं तुम्हारे टेलीविजन दूरदर्शन, और वो क्या स्टार टेलीविजन वगैरह, क्या क्या सब दुनिया भर की चीजें हैं, देखे बिना नहीं रह जाता। महात्मा ने कहा, तू इंद्रियों का गुलाम, इंद्रियों को नियंत्रण करने वाला मन, और मन का नियंत्रण करने वाला मैं, इसलिए मैंने कहा कि तू मेरे गुलाम के गुलाम का गुलाम है। राजा समझ गया, इसलिए कहते हैं, किं करोस्य मनसोपि किं करैर इन्द्रियैरह किं करी कृता। स्थिति में ये आत्मभूपति पहुंचा हुआ है, इसीलिए बार बार सुनने पर भी इसको पहचान नहीं पाता। सहदेव पांचों भाइयों में बहुत विद्वान थे, ज्योतिष के तो अत्यधिक विशेष विद्वान थे, अन्य शास्त्रों के भी विद्वान थे। इनमें पढ़ने लिखने में सबसे कम रुचि लेने वाला वृकोदर भीम था। भीम की सबसे बड़ी विशेषता थी, भोजन बनाना बहुत सुंदर जानता था। इसलिए विराट नगर में जब गुप्त रहने का समय आया तो उसने अपनी इस विद्या से ही अपना वहां काम चलाया। सहदेव तो राजा को शिक्षा देने वाले, राजा को ज्योतिष की बातें बतलाने वाले बने। भीम वहां पर अपना रसोइये का काम करता था। अभी भी भीम के द्वारा लिखित भीम का पाक शास्त्र मिलता है, जिसमें उन्होंने भोजन बनाने की कला विस्तार से बताई है, कैसे कैसे पकाया जाता है। भीम एक दिन सहदेव से कहने लगे, भैया तुम तो बहुत पढ़ा लिखा है, ये दुर्योधन हमेशा अच्छे अच्छे विद्वानों से पंडितों से घिरा रहता है, पढ़ा लिखा भी है, ये भगवान कृष्ण के महात्म्य को भी नहीं समझ पाता है। बड़े बड़े ऋषि हमेशा कृष्ण के बारे में कहते हैं और वो ऋषि इसके पास भी रहते हैं, इसको भी समझाते हैं, कभी समझ नहीं पाता है। क्या बात है? तब सहदेव जवाब देते हैं, भैया ये इतना सरल मामला नहीं है। आत्मा रामा विहितरतयो निर्विकल्पे समाधौ ज्ञानोद्रेकाद् विघटिततमो ग्रंथयः सत्वनिष्ठा यम वीक्षन्ते कमपि तमसां ज्योतिषां तापरस्तात् तम मोहांधः कथमयममुं वेत्तु देवं पुराणम्। तम मोहांध अयम, जिस दुर्योधन की तुम बात कर रहे हो वो अज्ञान से अंधा, मोहांध। जैसे अंधे आदमी के सामने सूर्य भी प्रकाश करता रहे तो क्या अंधे को दिख सकता है? सूर्य से बड़ा तो कोई प्रकाश हो नहीं सकता, परंतु सूर्य का प्रकाश भी अंधे व्यक्ति को दिख नहीं सकता जब तक पहले उसके आंख की औषधि न हो जाए। ठीक इसी प्रकार से जो अपनी नजर को बंद कर लेता है, ये मोहांध। तम मोहांध कथमय ममु वेत्तु देवं पुराणम, उस पुराण देव को ये कैसे जान सकता है? कृष्ण इसके सामने है, ऋषि इसको बतला रहे हैं कि ये कृष्ण भगवान है, एक तरह से रिश्तेदार भी। बलराम की लड़की दुर्योधन के लड़के को ब्याही थी, तो यदि बलराम और दुर्योधन आपस में समझी हुए तो कृष्ण भी तो समझी हुए, बलराम के भाई थे। ये नहीं है कि कोई बहुत दूर का उनका संबंध रहा हो, कृष्ण भी सामने ही है, रात दिन मिलते हैं, सारी बातें हैं। ऋषि लोग बार बार बतला भी रहे हैं लेकिन वो नहीं समझ पा रहा, क्योंकि जो मोह का अंधकार है उसको खोल नहीं पा रहा है। ये मोह का अंधकार कैसे खुले? तो सहदेव कहते हैं, आत्मा रामा विहित मतयो। जो लोग आत्मा में रमण करते हैं, जब तक अनात्म पदार्थों की तरफ तुम्हारी दृष्टि रहेगी तब तक तुम्हारे हृदय में सब समय विद्यमान, रात दिन तुम उसका व्यवहार करते हो, मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं चलता हूँ, मैं सोचता हूँ, ये मैं है कौन? परंतु बाकी सब चीजों को सोचते हो, कभी ये बैठ के सोचने का प्रयत्न ही नहीं करते, ये मैं कौन है? ज्यादा से ज्यादा यही पकड़ते हो कि मैं मन हूं। कभी सोचते हो जब गहरी नींद में चले जाते हो तो मन तो रहता नहीं है? गहरी नींद में मन न रहने पर भी तुम क्या कहते हो? मैं बड़े आनंद से सोया, मुझे कुछ पता नहीं लगा, मुझे कुछ पता नहीं लगा। इसलिए मन वहां था नहीं कुछ भी पता लगने के लिए, लेकिन सोया कौन? मैं सोया। वो मैं कौन है जो मन के बिना भी रहता है? उसी को तो आचार्य शंकर कहते हैं, को देवो यो मनस्साक्षि, वो परब्रह्म परमात्म देव वेत्त देवम पुराणम, वो पुराण देव कौन है? तो यह मैं ही वह पुराण देव है, रात दिन तुम्हारे सामने है लेकिन मोहांधा। तुम कहते हो अपनी बात छोड़ो, बाकी दुनिया की बात सोचो। वेदांत की ये एक विलक्षण दृष्टि है। बाकी सब दृष्टियों से भिन्न दृष्टि है। बाकी सब लोग कहते हैं तुम कहां ढूंढो तो कहीं बाहर जाके ढूंढो। वेदांत बार बार कहता है ये सारा संसार तुम्हारे हृदय में बैठा हुआ है। जब तक मन के अंदर वृत्ति नहीं बनेगी तब तक कोई संसार है नहीं। जब तक उस मन की वृत्ति को तुम प्रकाशित नहीं करोगे तब तक यह संसार प्रकाशित हो सकता नहीं। को देवो यो मन साक्षी, जो मन का साक्षी है वो पुराण देव है। परंतु ये तभी होवे जब आत्मरति होवे, आत्मा राम बने, अर्थात अनात्मा को छोड़े तब आत्मा की तरफ जाए। तेरहवें अध्याय के प्रारंभ में ही इसलिए भगवान ने कई बार ज्ञान साधना का वही विचार किया था। तेरहवें अध्याय में भगवान ने खोल के दोनों को कह दिया क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। जब तक खेती को देखोगे तब तक खेती के मालिक की तरफ दृष्टि नहीं जाएगी। क्षेत्रज्ञ, इस क्षेत्र को जानने वाला वो कौन है? अनात्मा से दृष्टि हटे तब आत्मा की तरफ जाए। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं अनात्मा दर्शने नैव परात्मान उपासमहि। अनात्मा की तरफ दृष्टि न ले जाना यही परमात्मा की उपासना है। अतः जब कहीं किसी प्रकार की विपरीत स्थिति आती है तो वेदांती तुरंत अपने अंदर झांकता है मेरे में खराबी कहां आई। वो व्यक्तिगत मेरा भी हो सकता है, ग्रहगत मेरा भी हो सकता है, जिस काल में जिसको तुम अपना मैं समझते हो, ग्रामगत गांव का मैं भी हो सकता है, देश का मैं भी हो सकता है। यदि तुम्हारे देश के ऊपर कोई दूसरा हावी हो रहा है तो बाकी सब कहेंगे वो दूसरे हमारे दुश्मन है। वेदांति कहेगा कहीं न कहीं हमारे देश में हम गलती कर रहे हैं तब विदेशी हमारे ऊपर हावी हो रहा है। दृष्टि हमेशा अपनी तरफ रहती है। जब इस प्रकार से बाहर से दृष्टि को अंदर की तरफ लाओ आत्मा रामाह विहितरतयः, तभी शास्त्र के अंदर जिसका विधान किया उसके प्रति रति होगी। जिसको आत्मा नहीं चाहिए अनात्मा चाहिए वो शास्त्र की बात को मानेगा क्यों? उसकी रति उधर होगी क्यों? आत्मा रामा विहित रतयो निर्विकल्पे समाधौ, तब निर्विकल्प समाधि में पहुंच करके ज्ञानोद्रेगाद् विघटित तमस ग्रंथया, तब ज्ञान का उद्रेक होता है। जब चित्त सर्वथा एकाग्र होकर के उस तत्व को ग्रहण करता है तब ज्ञान अंदर से उद्रिक्त होकर के मानो बाहर निकलना चाहता, भर जाता है अपने अंदर, तब जाकर के विघटित तमो ग्रंथयः, अंधकार की गांठें, शरीर के साथ मेरी गांठ लगी हुई है, मन के साथ गांठ लगी हुई है, इंद्रियों के साथ गांठ लगी हुई है, न जाने किन किन चीजों से गांठें लगी हुई हैं। आजकल के लोग तो बैंक अकाउंट से भी गांठ लगाए बैठे रहते हैं। विघटित तमो ग्रंथया, सभी अध्यासों की जो गांठें हैं वो विघटित हो जाती हैं, खुल जाती हैं, तब सत्वनिष्ठा, तब निरंतर सत्वगुण में स्थिति होती है। कमपि तमसाम ज्योतिषाम वा परस्तात्, तब वह जो ज्योतियों का ज्योति, सारे ज्योतियों से परे जो ज्योति है उसको यम वीक्षन्ते, जिस उस पुराण देव को वो देखते हैं तब मोहांधक कथमय मोह वेद तो देवम पुराण, उसको ये मोहांध कैसे जान सकता है। तो यद्यपि वह आत्मा हमारा स्वरूप है, सर्वदा हमको प्राप्त है आत्मभूपतिरयम पुरातन, लेकिन चूंकि ये किंकर के किंकर का किंकर बना हुआ है, इसलिए जब तक ये आत्मा राम नहीं हो जाए तब तक काम बनता नहीं, और आत्मा राम बनने के लिए उस आत्मा के स्वरूप को जानना जरूरी। इसलिए भगवान ने सारे साधनों का निरूपण करने के बाद प्रतिज्ञा की, ज्ञेयम् यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मृतमश्नुते। प्रतिज्ञा करते हैं कि ज्ञेयम् यत्तत् प्रवक्ष्यामि, जो वह चरम लक्ष्य है वो मैं तेरे को अब प्रकर्षेण वक्ष्यामि, फली प्रकार से समझा करके कहूंगा। प्रवक्ष्यामि इसलिए कहा कि पहले भी थोड़ा थोड़ा तो कहते आए हैं भगवान, लेकिन अब कहते हैं प्रकर्षेण वक्ष्यामि, उस लक्ष्य को मैं बिल्कुल स्पष्ट करके समझा करके कहूंगा। यज्ञात्वा अमृतमश्नुते, उस चरम लक्ष्य को जानने के साथ ही अमृत की प्राप्ति हो जाती है। तो चरम लक्ष्य वह है जिसको प्राप्त करने के बाद कुछ प्राप्त करना रह नहीं जाता, क्योंकि सब कुछ प्राप्त हो जाता है। उस चरम लक्ष्य के प्राप्ति और समझने के साधनों का कई बार निरूपण किया था, अब उस चरम लक्ष्य के स्वरूप का निरूपण किया जाता है। यद्यपि वेदांतों में जैसा हमने प्रारंभ में कहा प्रायः करके पहले ही साध्य का निरूपण हो जाता है, परंतु यहां क्योंकि अर्जुन ने प्रश्न किया था ज्ञानम ज्ञेयम च केशव, मुझे ज्ञान और ज्ञेय बताए, इसलिए पहले साधन ज्ञान निरूपित कर दिया, ज्ञेय का निरूपण कर रहे हैं। उस ज्ञेय के ऊपर आगे फिर विचार करेंगे। ओम मदेवाद्रम पश्येम्क्षत्रा स्थिरंगुवाघुस क्षेमदेवित यदा स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति नूषा विश्वस्ताक्षो अरिष्टने स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। शांति शांति शांति।